اذان دے دیں. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
یہ آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں بہت سے دائمی غیر مبدل اصول بیان فرمائے گئے ہیں اور بعض ایسے قوانین قدرت کا بھی ذکر ہے جن میں کوئی تبدیلی نہیں. اسی طرح قوموں کی زندگی اور موت، ترقی اور زوال کے اسباب میں بھی ان مختصر آیات میں اشارہ ہے. اسی طرح وہ لوگ جو بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں اور بعض انتظامات چلاتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں ایک گہری نصیحت ہے. ان آیات کا ترجمہ اگرچہ بالکل سادہ اور واضح ہیں، مگر پھر بھی ممکن ہے بعض دوست آپ میں سے نہ جانتے ہوں، اس لیے میں سادہ الفاظ میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں. ان مال اسر یسرا، یقیناً تو تنگی کے ساتھ آسائش بھی ہے. ان مال اسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسائش بھی ہے، یا محنت اور مشقت کے ساتھ آسائش بھی ہے. فیضا فرغت فانصب، بس جب تو فارغ ہو جا تو خدا تعالیٰ کی راہ میں، خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جایا کر. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، پھر اپنے رب کی طرف ہی رغبت کر. ان آیات پر میں نے پاکستان میں بعض خطبات میں روشنی ڈالی تھی. ان تمام باتوں کو دہرانا آج مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک دو زائد باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اذا فرغت فانصب، میں ایک مضمون پہلے میں بیان کر چکا ہوں، وہ یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا تعالیٰ کے ذکر میں اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں تکلیف نہیں تھی بلکہ راحت تھی، اور دنیا کے کاموں میں یا دین کے وہ کام جو براہ راست عبادت سے تعلق نہیں رکھتے اور دوسری مصروفیات انسان کو الجھائے رکھتے ہیں، ان کاموں میں وہ لذت نہیں تھی جو لذت عبادت میں تھی. تو جس طرح عسر کا یسر سے مقابلہ ہوتا ہے، عسر اگر مشقت اور محنت اور تنگی کو کہتے ہیں تو یسر آسائش کو، آرام کو، سکینت کو کہتے ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن کے کاموں میں ہر چند کے وہ دین ہی کے کام تھے، اور خدا کی عبادت میں وہی نسبت تھی جو عسر کو یسر سے ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا فیضا فرغ تفن سب، جب تو دین کے کاموں سے جو دن کو درپیش ہوتے ہیں لیکن براہ راست عبادت سے تعلق نہیں رکھتے، ان سے فارغ ہو جایا کر، تو پھر اپنی مرضی سے تیرا حق ہے کہ کچھ آرام بھی کر لے، اور وہ آرام یہ ہے فیلا رب کا فرغت، اپنے رب کی طرف رغبت کر اور خدا کی یاد سے لذت اٹھا، لذت پا. یہ وہ مقام ہے جو ابتدا میں نصیب ہونا تو درکنار، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سے عبادت کرنے والوں کے لیے نصب کا مقام تو رہتا ہے، نصب کی منزل پر وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور رغبت کی منزل ان کو نصیب نہیں ہوتی، اس لیے وہ بڑی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں. وہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے تو عبادت کی، ہمیں مزہ نہیں آیا. اس مزے سے پہلے وہ اندرونی نفسیاتی رجحان پیدا کرنا ضروری ہے جو محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. جب تک عبادت کے اندر محبت کی روح نہ پائی جائے، اس وقت تک نہ رغبت کا مضمون سمجھ آ سکتا ہے نہ رغبت نصیب ہو سکتی ہے. بس اس آیت کریمہ میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، معنی کے سمندر ہیں اور بہت سی نصیحتیں ہیں، بہت سے قوانین قدرت کے راز ہیں جن سے پردے اٹھائے گئے ہیں. انا مال اسر یسرن، انا مال اسر یسرا کو اگر سائنسی زبان میں آپ ڈھالنے کی کوشش کریں تو وہ سائنس کا یہ مشہور محاورہ کہ ان پٹ از نیور گریٹر دین آؤٹ پٹ،
آؤٹ پٹ از نیور گریٹر دین ان پٹ. یہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان پٹ کے سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتی، اور اس کا لازمی انحصار ان پٹ پر ہے. ان پٹ انرجی فیڈ کرنے کا نام ہے. کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو قوت خرچ کرتے ہیں اس کو ان پٹ کہتے ہیں، اور اس کام کے نتیجے کو آؤٹ پٹ کہتے ہیں. تو اس سادہ سے سائنس کے فقرے میں
بہت گہرا قانون قدرت کا ایک راز بیان ہوا ہے جس سے مغربی قوموں نے بے انتہا فائدے اٹھائے ہیں. گھر بیٹھے جنتر منتر سے کچھ نصیب نہیں ہوگا، یہ پیغام ہے. جو کچھ تمہیں نصیب ہوتا ہے تمہاری محنت سے نصیب ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو نصیب ہوتا ہے وہ محنت کے مقابل پر کم ہوتا ہے، یہ قانون ہے. اس قانون کو جب ہم مذہبی رنگ میں سمجھتے ہیں تو بالکل ایک نیا مضمون پیدا ہو جاتا ہے. قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان پٹ کے سوا تمہیں راحت نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن خدا کی راہ میں تم جتنی ان پٹ کرتے ہو اس سے بہت زیادہ راحت نصیب ہوگی. یہاں سائنس کا وہ ابتدائی قانون صرف عمل پر پیرا نہیں رہتا، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے. یہ مضمون لیسا للانسان الا ما سعى تو اپنی جگہ قائم ہے، کسی انسان کو بغیر محنت کے نہیں ملے گا. مگر جب ان پٹ خدا کے لیے کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا حصہ بیچ میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر فیضا فرق تفنصب و الا رب کا فرغب کا مضمون شروع ہو جاتا ہے. جب تو خدا کی راہ میں محنت کرے گا تو پھر لا متناہی سلسلہ ہے رغبتوں کا، ایک ایسا سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں جس کے لیے جتنا چاہے وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے. بس حقیقت میں دنیا کے قوانین پر ہی قدم رکھتے ہوئے روحانیت کے قوانین تک رسائی ہوتی ہے. یہ خیال کر لینا کہ ہم دنیاوی قانون سے بالا ہیں یہ درست نہیں ہے. پہلے مادی قوانین جو قدرت کے قوانین ہیں اور خدا ہی نے بنائے ہیں، ان پر عمل کرنا سیکھیں، ان کی حقیقتوں کو سمجھیں، ان حقیقتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنے زندگی کے منصوبے ڈھالیں اور محنتیں کریں. پھر یاد رکھیں کہ آپ اس مقام پر فائز ہو چکے ہیں جہاں اب دین میں جب آپ وہی راہ اختیار کریں گے تو ایک بالائی منزل تعمیر ہوگی، اور وہ قانون قدرت کوتا رہ جائے گا آپ کے وہ نتائج کے مقابل پر جو آپ کو نصیب ہوں گے. قوانین قدرت تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی محنت کا زیادہ سے زیادہ برابر نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے ملاحظہ کیا ہے محنت کا برابر نتیجہ بھی نہیں نکلا کرتا، کیونکہ محنت میں کچھ حصہ ضیاع کا ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. مثلا جب آپ موٹر میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو اگرچہ اس کی طاقت کا ایک بڑا حصہ پہیوں کو چلانے میں کام آتا ہے اور دیگر بجلی کے کل پرزوں کو چلانے میں کام آتا ہے، لیکن فرکشن کے نتیجے میں और कुछ मशीन की खराबी के नतीजे में मशीन में ये सलाहियत नहीं होती कि तमाम ताकत को वहां मुंतकिल कर सके जहां मुंतकिल करना मकसूद था, एक हिस्सा उसका जाया चला जाता है। इसीलिए आप अगर वाकिफ हों साइंसी मुहावरों से तो आप मशीनों के मुतलिक ये भी मालूम लिखा हुआ पाएंगे कि इसकी एफिशिएंसी 70% है, 80% है, 90% है। आज तक कोई कार ऐसी ईजाद नहीं हुई, कोई भी मशीन दुनिया में ऐसी ईजाद नहीं हुई जो 100% अमानत के साथ आपकी ताकत का फल आपको अता कर दे। बस वो जो दरमियान में फ्रिक्शन है वो दरअसल मशीन की खयानत है, वो कुछ हिस्सा अपने लिए रख लेती है, कुछ ज़ाया कर देती है। पर इसमें हमें एक और नुक्ता भी हाथ आया कि जितना खुदा की राह में कोई अमीन होगा उतना ही उसकी मेहनतों को बेहतर फल लगेंगे, और जितना अमानत में खयानत करने वाला होगा उतना ही उसकी मेहनत में कमी आती चली, मेहनत के फलों में कमी आती चली जाएगी। अब बज़ाहिर दो इबादत करने वाले एक रात जाग कर खुदा की राह में खड़े रहते हैं, लैलतुल कदर की रात में बाज़ ऐसे लोग भी, यानी लैलतुल कदर की रात समझते हुए 27 रमज़ान को मसलन, बाज़ ऐसे लोग भी इबादत के लिए हाजिर हो जाते हैं जिनको आम वक्तों में 5 वक्त नमाजों की भी तौफीक नहीं होती, लेकिन बहरहाल एक जज्बा है, वो समझते हैं कि शायद इस घड़ी का कोई ऐसा लम्हा हमें नसीब हो जाए कि हमारी ज़िंदगी की सारी कोताहियाँ धुल जाएं और अल्लाह ताला मग़फ़रत का सलूक फरमाते हुए हमें दोनों जहान की नेमतों से नवाजे। इस नेक तमन्ना पे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो भी खड़े रहते हैं और एक ऐसा आदमी भी खड़ा रहता है जो जिसका दिल इबादत में रहता है, जो हमेशा खुदा की मोहब्बत की तलाश में रहता है। इन दोनों का बज़ाहिर एक ही है, एक जैसा ही वक्त है, लेकिन वाकईतन उनकी इबादत की क्या कैफियत है अल्लाह ताला के सिवा कोई समझ नहीं सकता। लेकिन दुनिया के अंदाज़ों के मुताबिक हम ये ज़रूर जानते हैं कि बाद लोग इस किस्म के होंगे और बाद उस किस्म के होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो खड़े रहते हैं, उनको तकलीफ़ महसूस होती है, बार बार दिल उकताता है, थकावट महसूस करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम खड़े रहें और खुदा को याद करें, लेकिन दूसरे तसव्वुरात, दूसरे ख्यालात, फिक्रें, आरजुएं उनका दामन थामती हैं और दुआ करते करते उनकी तवज्जो बिखर कर इधर उधर चली जाती है और खुदा से हट जाती है। कुछ ऐसे हैं जिनकी इबादत का अक्सर हिस्सा इसी कैफियत में गुजरता है, कुछ ऐसे हैं जिनकी इबादत का निस्बतन कम हिस्सा इस कैफियत में गुजरता है, कुछ ऐसे हैं जिनकी इबादत पर खुदा की याद का, खुदा की मोहब्बत का गलबा रहता है, कुछ ऐसे हैं जिनकी इबादत पर दुनिया की मोहब्बतों का गलबा रहता है और खुदा की मोहब्बत की झलकियाँ कहीं कहीं उनको दिखाई देती हैं। तो ये फ़र्क है अमीन और गैर अमीन में। जो खुदा की तरफ से उसकी इबादत का अमीन हो वो तमाम तर तवज्जोहात को खुदा की राह में खर्च कर रहा होता है और उसके नतीजे में उसकी इनपुट बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत ऐसे शख्स के, यानी इनपुट तो बराबर होगी लेकिन आउटपुट ज़्यादा होती है। इनपुट से मुराद है जो उसने मेहनत की, दोनों मेहनत कर रहे हैं लेकिन एक की मेहनत ज़ाया जा रही है क्योंकि वो अमीन नहीं है, वो अच्छी किस्म की मशीन नहीं है, इसलिए मकसद पर खर्च करने की बजाय वो ताकत को दाएं बाएं खर्च कर रहा है। और एक शख्स जो लिल्ला वक्फ है और ऐसा अमीन है खुदा की राह में कि तमाम ताकतें खालिसतन खुदा के लिए खर्च कर रहा होता है, वो मुकाम मोहम्मदियत पर फायज है। बस अदना मुकाम से लेकर मुकाम मोहम्मदियत तक लाखों करोड़ों दीगर मरातब और मनाजिल हैं जिनमें से गुजरते रहने का नाम ही दरअसल सलूक है, यानी खुदा की राह में कदम बढ़ाना, कोशिश करते चले जाना। तो इन्ना माल उसरे यूसरन, इन्ना माल उसरे यूसरा के साथ जब ये फरमाया फायजा फरग तफनसा वला रब्बे का फरग, तो ये सबक दिया कि दुनिया में जो तुम मेहनतें करते हो उनका तो तुम्हें बराबर नतीजा मिलेगा, लेकिन हम तुम्हें एक और सलूक का और मेहनत का रास्ता बताते हैं जहां अजर लामुतनाही हो जाता है। चुनाचे लामुतनाही अजर का मजमून कुरान करीम में हमेशा ईमान और अमल सालिया के साथ मुंसलिक पाया जाता है। दुनिया के किसी कवानीन के कानून के मुतल्लिक खुदा ताला ने गैर ममनून अजर का कोई जिक्र नहीं फरमाया। बस इस पहलू से जमात अहमदिया को अपनी मेहनतों को ज़्यादा से ज़्यादा उन राहों में इस्तेमाल करना चाहिए जो राहें लामुतनाही अजर की तरफ लेके जाती हैं, और उन मेहनतों पर निगरान रहना चाहिए कि जिन मकासद की खातिर हम काम कर रहे हैं हमारा वक्त और हमारी तवानाई उन्हीं मकासद पर खर्च हो रहे हैं और बिखर नहीं जाते इधर उधर, और हमारे नफसानी ख्यालात और दिल की बेईमानियां उन नेक कोशिशों को ज़ाया नहीं कर देती। ये वो फ़र्क है जो इबादत और इबादत में फ़र्क पैदा होता है, और इसी के नतीजे में फिर आउटपुट का फैसला होता है कि किसी को क्या मिलेगा। बस जमात अहमदिया एक आरिफाना जमात है, ये कोई मौलवियों की जमात नहीं है जिसने ज़ाहरी तौर पर बाज़ वुज़ू की शर्तें अदा कर दी और नमाज के लिए खड़ा होकर एक किस्म की मस्नूई सी नमाज पढ़ ली जो ज़ुबान से अदा की जाती है, बल्कि जमात अहमदिया चूँकि इरफान पर मबनी जमात है इसलिए जमात अहमदिया की नमाजों में दिल का शामिल होना बल्कि मुसलसल दिल का इबादत में शामिल रहना ज़रूरी है। जहाँ दिल आप उचटता देखेंगे वहीं समझ लें कि इबादत में कुछ खयानत हो गई है, और वहाँ फिर इस्तिग़फ़ार का मज़मून शुरू हो जाता है। और इसका फैसला कैसे हो कि हम इबादत में अमानत का हक अदा करने वाले हैं या इस पहलू से कोताहियां हो रही हैं, इसका एक आसान गुर खुदा ताला ने इसी इन्हीं आयात करीमा में आखिर पर बता दिया फ़र्गब के लफ्ज़ से, कि वो इबादत जिसमें तुम लज्जत महसूस करने लगोगे यकीन करो कि वो इबादत दुरुस्त थी और उस इबादत में तुमने अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं किया और सही रास्ते पर खर्च किया है। जो इबादत जिस हद तक लज्जत से महरूम रहती है उसमें रग़बत का पहलू पैदा नहीं होता उसी हद तक तुमने अमानत का हक अदा नहीं किया। बस आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को चूंकि अमीन मुकर्रर फरमाया गया था और तमाम अमानतदारों से बढ़कर आप अमीन थे, इसलिए आपकी इबादत का लाजमी नतीजा ये निकाला है फैज़ा फ़रग़ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, खुदा के तरफ आपके मायल होने का नाम ही रग़बत है और कोई मज़मून बीच में पैदा ही नहीं होता। जब भी आप खड़े होंगे रग़बत के साथ खड़े होंगे, जब भी इबादत करेंगे रग़बत के साथ इबादत करेंगे। बस रग़बत के साथ इबादत इसलिए ज़रूरी है कि फ़नसब का नतीजा ये है, वरना इन्ना माल उसर युसरन का मज़मून नहीं बनता। उसर के बाद युसर नसीब होना चाहिए। अगर इबादत की सख्तियाँ इंसान झेलता है और लज्जत से महरूम रहता है तो फिर सिर्फ सख्तियाँ हिस्से में आएंगी और लज्जत से महरूमी बताती है कि युसर का कोई मंजिल उसको नसीब नहीं हुई। बस शुरू से जब आप इस मज़मून को पढ़ते हैं इन्ना मालूस रे युसरन इन्ना मालूस रे युसरा, तो इबादत का मज़मून भी खूब वाज हो जाता है और हर इंसान को अल्लाह ताला एक ज़रिया अता फरमा देता है अपनी इबादत की पहचान का, अपने मुकाम और मरतबे की पहचान का। और ये वो ऐसा राज है जो खुदा और बंदे के दरमियान रहता है। अल्लाह ताला जानता है किसकी इबादत किस हद तक मकबूल है, किस हद तक किसी बंदे को रग़बत नसीब हुई, या वो बंदा जानता है अगर वो जानना चाहे। लेकिन बदनसीबी ये है कि अक्सर इंसान एक गफलत की हालत में ज़िंदगी गुजार देते हैं, और अगर वो जानना चाहें भी तो इसलिए जानना नसीब नहीं होता कि उनकी आंखों पर गफलत के पर्दे होते हैं और नहीं पता कि कैसे जाना जा सकता है। इसलिए वे समझते हैं कि इस इबादत के में से गुजर कर जब हम वापस आते हैं तो हम पहले से बेहतर बन चुके होते हैं। लेकिन और भी पहलू हैं इस पहचान के, ना इस बात को जानने के लिए और भी पहलू हैं इस बात की पहचान के कि इबादत ने उनमें कोई फर्क डाला या नहीं डाला। एक दो जब मैं युगेंडा सफर पर था, वहां मैंने एक ईसाइयों और मुसलमानों की मुश्तरका इज्तम से खिताब करते हुए उनके सामने मैंने इस बात को खोला, तो बहुत से वहाँ के जो मौजूदीन थे उन्होंने बाद में बहुत ही गहरी दिलचस्पी ली इस बात में। मैंने उनसे कहा कि हर दफ़ा जब हम एक यानी मौका यह था कि हम एक मस्जिद के इफ्तिताह के लिए इकट्ठे हुए थे, मैंने कहा जब भी कोई इबादत करने वाला मस्जिद जाता है या गिरजे जाता है या जो भी उसके इबादत घर का नाम है वहाँ जाता है, तो जिस हालत में जाता है अगर वैसा ही वापस आ जाता है तो फिर उसका आना जाना महज एक वक्त का ज़िया है, एक हरकत है जिसका नतीजा कोई नहीं। अगर आप किसी कपड़े को किसी रंग में भिगोएं और बाहर निकालें तो वो सारा रंग पीछे छोड़ाए, तो ऐसे कपड़े को रंग देना बिल्कुल एक तमस्खराना बात होगी। जो कपड़ा रंग कबूल ही नहीं करता उसको बार बार गरीब को गोते देने का फायदा क्या। इसलिए जो भी रंग के फन के वाकिफ होते हैं वो कपड़े को पहले थोड़ा सा भिगोकर देखते हैं, अगर वो रंग को कबूल ना करे तो फिर ये तवज्जो करते हैं कि क्यों रंग को कबूल नहीं कर रहा, फिर उन दागों को दूर करते हैं, उनको ऐसे तेजाबों से गुजारते हैं जिनके नतीजे में वो रंग को कबूल ना करने वाली जो बाज बदियां या बाज धब्बे उस पर पैदा हो चुके होते हैं उनको वो काटते हैं और साफ करके फिर जब डुबोते हैं तो रंग को कबूल कर लेता है। तो हर शख्स जो इबादत के लिए कहीं जाता है जब वो वापस आता है उसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए, यानी जब वो खुदा से मुलाकात करके आए वापस आके वैसे का वैसा रहे तो ये अजीब सी बात है। कम से कम इतना ही करे कि जब मुलाकात करके आए तो महसूस करे कि मैं किसी बड़े घर से वापस आया हूँ और कुछ देर अपनी आदात में कुछ पाक तब्दीलियां पैदा करें। जब किसी को कोई मनसब नसीब होता है तो उसके इर्द गिर्द के लोग भी उस जिम्मेदारी को महसूस करने लग जाते हैं, कुछ फर्क महसूस करते हैं। बस इबादत का एक आम नतीजा निकलता रहना चाहिए कि इबादत करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई रंग इख्तियार करता चला जाए और ये शऊर उसमें पैदा होता चला जाए कि चूंकि मैं इबादत करने वाला हूँ इसलिए आम इंसानों से बढ़कर मुझ पर जिम्मेदारियाँ हैं, आम इंसानों से बढ़कर मुझे बावकार होना चाहिए और मेरी आदात और खसलतों में कुछ खुदा के रंग चढ़ने चाहिए। अगर वो रंग नहीं चढ़ते, अगर वो बनी नौ इंसान से जैसा पहले बदसलूकी किया करता था वैसे ही बदसलूकी करता चला जाता है, अगर वो वैसे ही लोगों के अम्वाल खाता है, अगर वैसे ही वो गरीबों पर जुल्म करता है, अगर वैसे ही बदज्ञानती से पेश आता है, वैसे ही तुरशरूई से पेश आता है, अपने अहलो अयाल के हकूक़ अदा नहीं करता, उनसे नरमी का सलूक नहीं करता, या बीवी है तो अपने खावंद के हकूक़ अदा नहीं करती, बच्चों के साथ हुस्न खुल्क का मुजाहरा नहीं किया जाता, रिश्तेदारों के साथ उनके हकूक की अदायगी नहीं की के साथ बदसलूकी की जाती है, बदमामलगी की जाती है, इन ये सारे मामलात और इस किस्म के बहुत से हैं जिनमें रोज़ाना सच्ची इबादत के नतीजे में कुछ ना कुछ फ़र्क होना चाहिए। ये नामुमकिन है कि इबादत सच्ची हो और इन तमाम अमूर में जिनका मैंने जिक्र किया है बल्कि इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में कोई ना कोई पाक तब्दीली पैदा ना होने शुरू हो जाए। बस जब नहीं होती तो आपके दिल में सवाल उठना चाहिए कि अल्लाह ताला तो फरमाता था कि इन्ना माल उसरे युसरन, उसर के बाद युसर नसीब हुआ करता है, मेरे हिस्से में तो सिर्फ उसर ही आ रहा है, मैं तो 5 वक्त वुजू करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मस्जिद के चक्कर लगाता हूँ या घर में टकरे मारता हूँ और कुछ तकलीफ उठाता हूँ, मगर वो युसर कहाँ चला गया, जिसको खुदा रगबत फरमाता है, मुझे तो वो नसीब नहीं हुई और मेरे अंदर वो तब्दीलियां पैदा नहीं हुई जिनके नतीजे में खल के खुदा समझे कि ये खुदा वाला इंसान है। इससे रोजमर्रा हर शख्स अपनी अपनी तौफीक और हैसियत के मुताबिक अपनी इबादत की कदर पहचान सकता है। लेकिन कितने हैं जो ऐसा करते हैं? जमात अहमदिया में, क्योंकि आजकल मैं इबादत के मज़मून पर जोर दे रहा हूं और समझा रहा हूं बार बार कि जब तक हम इबादत पर कायम नस्लें पीछे नहीं छोड़ेंगे हम अपने हक को अदा करने वाले नहीं होंगे, इसलिए इस मज़मून की तरफ मैं खुसूसियत से तवज्जो दिला रहा हूं। पहला काम तो वो था जिसके मुतल्लिक मजालिस खुदामुल अहमदिया अंसारुल्लाह लजनात ने मेहनत शुरू कर दी है और मैं बहुत खुश हूँ कि सारी दुनिया से ऐसी कसरत से रिपोर्टें आ रही हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के सदरान लजना अंसारुल्लाह खुदामुल अहमदिया अपने अपने दायरे में मंसूबे बना रहे हैं, लिटरेचर तैयार कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो से मदद ले रहे हैं, घर घर बच्चों तक पहुँच कर उनके जायजे लिए जा रहे हैं और जहाँ बड़े महरूम हैं इन बातों से वहाँ उनके जायजे लिए जा रहे हैं। तो सारी जमात में बेदारी का आगाज हो चुका है। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि सारी जमात बेदार हो चुकी है, क्योंकि बेदारी होते होते भी वक्त लगा करते हैं। जब पहले शफक की लौ फूटती है तो कौन सी सब दुनिया एकदम उठ जाया करती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 9-10 बजे उठते हैं फिर, और बाज तो 11-12 बजे तक पड़े रहते हैं बेचारे, सूरज सिर पे चढ़ आता है और वो बैठ पड़े रहते हैं अपनी गफलतों में। तो ऐसे भी होंगे, लेकिन जब अमूमन बेदारी शुरू हो जाए तो मालूम होता है कि सुबह हो गई है। तो मैं उस सुबह के आसार देख रहा हूँ जो हर तरफ खुदा तआला के फजल से फैलती चली जा रही है। और जमात अहमदिया में ये एहसास तंजीमी लिहाज से बेदार हो रहा है कि हमारे मकासद में अव्वल मकासद इबादत गुजार बंदे पैदा करना है, और इस पहलू से जो लवाजमात हैं उनकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए, नमाज के आदाब सिखाने चाहिए, नमाज का मज़मून, नमाज की इबारत याद करवानी चाहिए, उसके मानी समझाने चाहिए। चुनांचे अल्लाह के फजल से इस तरफ से कोशिशें शुरू हैं। लेकिन एक हिस्सा वो भी है जो इबादत पर कायम है और बाकियों के मुकाबले पर बिलअमूम जमात अहमदिया को एक अददी अक्सरियत हासिल है या तनासुबी अक्सरियत हासिल है। नस्बत के लिहाज से जमात अहमदिया में खुदा के फजल से ज़्यादा नमाज पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको कैसी नमाज पढ़नी चाहिए ये भी तो हमें समझाना चाहिए। उसके जो बात के वसी मरातिब हैं और बड़े बड़े मुकामात हैं वो तो बाद में आएंगे, लेकिन उस सिमत में दुरुस्त हरकत होना ज़रूरी है। बस इन दो पहलुओं से अपनी नमाजों को जांचें, और ये दोनों पहलू खुदा ताला ने बयान फरमाए हैं और खोल कर बयान फरमाए हैं। आपकी नमाज एक मेहनत है, उस मेहनत के नतीजे में आपको यूसर नसीब होना चाहिए, और यूसर इंसानी अखलाक का यूसर भी है। आपके अंदर जो तेज़ी और तुर्शी पाई जाती है वो उसर है। उसके मुकाबले पर जब अखलाक दुरुस्त हो जाएं और मिजान दुरुस्त हो जाए, मिजाज का मिजाज इत्तदाल पर आ जाए, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले की नस्बत ज़्यादा हल्के फुल्के वजूद बन गए हैं। तो आम पहचान इबादत की कबूलियत की ये है कि आपके अंदर ऐसी पाक अखलाकी तब्दीलियाँ पैदा हों कि आप ज़्यादा आला दर्जे के इंसान बनना शुरू हो जाएं और उस पाक तब्दीली को अपनी ज़ात में महसूस करने लगें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी इबादत सिर्फ मेहनत है और उसका फल आपको नसीब नहीं हो रहा। दूसरा ये कि इबादत में अगर पहले लज्जत नहीं तो कुछ लज्जत की झलकियाँ आनी शुरू हो जाएं, जिसका मतलब यह है कि आपने इबादत के एक हिस्से का हक अदा किया। याद रखें, अगर आप अमीन हैं तो खुदा सबसे बढ़कर अमीन है। ये नामुमकिन है कि आप खुदा की खातिर उसर इख्तियार करें और अमानत का हक अदा कर रहे हों, जितनी मेहनत कर रहे हैं खुदा की खातिर उसकी जानिब कर रहे हों, इखलास के साथ उसकी तरफ रुख करते हुए कर रहे हों, और आपको यूसर नसीब ना हो, आपको आसानी ना मिले, ये नामुमकिन है। वही खुदा जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा था, वही आपका खुदा है, जिसने उनकी इबादत के मुतल्लिक फरमाया इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, तू जब खुदा की राह में खड़ा होगा तो हमेशा रग़बत पाएगा, एक लम्हा भी ऐसा नसीब नहीं होगा तुझे जो रग़बत से आ रही हो। बस उसी खुदा ने आपसे भी सलूक फरमाना है, इसलिए अपनी रग़बतों को कसौटी बना लें ये जांचने की कि किस हद तक आप खुदा की इबादत के हक अदा कर रहे हैं। इस पहलू से फिर आइंदा नस्लों को भी समझाना शुरू करें, अपने गिर्दोपोश को समझाना शुरू करें, और अगर कुछ पेश ना जाए, कुछ समझ ना आए, तो उसका जैसा कि मैंने इलाज बताया था वो भी लफ्ज़ रग़बत में रखा गया है। दिल को टटोलें, आपके अंदर मोहब्बत की कमी है, मोहब्बत के बगैर रग़बत नसीब नहीं हो सकती। जो शख्स अपने दुनियावी महबूब से मिलने के लिए मेहनत करता है, उसके लिए ये दिक्कत कि आज सर्दी की कड़ी रात है या गर्मी की कड़ी रात है, ये महबूब से मिलने की लज्जत में कमी नहीं पैदा कर सकती। ये दिक्कतें अपनी जगह होंगी, लेकिन जिसको सच्चा प्यार होगा, उसको अपने महबूब से चाहे वो गर्मी की तपश में मुलाकात हो या सर्दी की इंतहा में मुलाकात हो, लाजमन लज्जत मिलेगी। और इसके लिए लोग फिर बड़ी बड़ी मेहनतें भी करते हैं, रातें जाग कर गुजारते हैं। कई जो सुबह देर से उठने वाले हैं ऐसे भी हैं जो इबादत की बजाय दुनियावी महबूबों के लिए रातें जाग के गुजार रहे होते हैं, सुबह फिर वक्त पर उठा नहीं जाता, लेकिन लज्जत तो मिलती है। कम से कम वो अमीन है, दुनियावी मोहब्बतों के जरूर अमीन है। तो आप खुदा की मोहब्बतों के अमीन बने बगैर कैसे लज्जत हासिल कर लेंगे? बस वो अमानत का हक यही है कि आप उससे प्यार और मोहब्बत, प्यार का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, और अगर नहीं है तो फिक्र करें और वो रस्ते तलाश करें जिनसे खुदा तआला का प्यार पैदा होता है। और जैसा कि मैं पहले इस मज़मून पर रोशनी डाल चुका हूँ, सिर्फ बेदारी और शऊर की ज़रूरत है। चारों तरफ से खुदा की रहमतों ने आपको घेरा हुआ है, कोई लम्हा ऐसा नहीं जब आप खुदा की रहमतों के नज़ूल से आ रही हों। एहसास और शऊर है, सिर्फ ये पैदा होना शुरू हो जाए तो प्यार का एहसास भी बढ़ता चला जाएगा, और जब मोहब्बत पैदा हो जाए तो फिर खुश्क नसीहतों की ज़रूरत बाकी नहीं रह करती, फिर एक तबी नतीजे के तौर पर आपकी इबादतों में सुरूर पैदा हो जाएगा, आपके जिक्र इलाही में गर्मी पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला जमात अहमदिया को इबादत के मनासिब का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر